आगे सबक देखिए भाई, व महसूलुहु मा ज़करहु बाज़ुल मुहक्किकीन हैसु क़ाल कमा अन्न फिल ख़ारिज मौजूदन क़ाइमन बिज़ातिही व मौजूदन क़ाइमन बिग़ैरिही كذلك في الذهن معقول هو مدرك قصدا ملحوظا في ذاته يصلح ان يحكم عليه وبه ومعقول هو مدرك طبعا وآلة لملاحظة غيره فلا يصلح لشيء منها. गुज़श्ता सबक में इस्म की तारीफ हमने शुरू की थी. साहिबे काफिया ने आपको बतलाया अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही कि इस्म जो है वो ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर फी नफ्सिही ऐ फी नफ्सी मा दल्ला जो उस कलिमे की जात में होता है. तो फी नफ्सिही की हा जमीर किसको लौटाई, मां को, और मां से क्या मुराद है, कलिमा मुराद है भाई. तो मुख्तसर लफ्जों में यूं कहो कि फी नफ्सी ही की जमीर कलिमा को राजे है. तो इसम वो कलिमा है जो ऐसे माना पर दलालत करता है जो उस कलिमा की जात में होते हैं, और कलिमा की जात में माना होने का मतलब यह है कि कलिमा खुद उस पर दलालत करता है, वो किसी और कलिमे का मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है. और फिर उसके बाद ये गुज़श्ता सबक में मुसन्निफ ने ईज़ाह की इबारत नकल की थी. मैंने आपको बतलाया कि अल्लामा इब्ने हाजिब ने ये काफिया को मुफस्सल से अखज किया है, और इसी मुफस्सल की एक अलहदा शरा भी की है साहिब काफिया ने जिसका नाम ईज़ाह है. इस ईज़ाह के अंदर उन्होंने मुफस्सल की वजाहत की है. तो قال المصنف في الإيضاح, मैंने आपको बतलाया कि यहां से साहिब जामी जो हैं वो ईज़ाह की इबारत नकल करके ये बतलाना चाहते हैं कि हमने तो मानन फी नफ्सी ही यहां जमीर कलिमा को राजे की है, लेकिन साहिब काफिया ने ईज़ाह के अंदर ये फी नफ्सी ही कि हा जमीर माना को राजे की है. किसको राजे की है, माना को. भाई माना फी नफ्सी ही अगर पहले किसको लौटाएं, कलिमा को, वो ऐसा माना जो कलिमा की जात में हो. मैंने उसका मफहूम बतला दिया कि माना का कलिमे की जात में होने का मतलब यह है कि कलिमा खुद ब खुद उस पर दलालत करे, वो किसी और कलिमे के जुड़ने का मोहताज ना हो. लेकिन अगर इस नफ्सी ही की हा जमीर को किसकी तरफ राजे करें, माना की तरफ, तो फिर तो कलाम बन गया मानन फी नफ्सिल माना, ऐसा माना जो किसके अंदर है, माना के अंदर है. तो फी आता है जरफियत के लिए, यहां फी आया, फी से माकबल भी माना और फी के माबाद भी माना. तो गोया जरफियतु शैली नफ्सी ही लाजिम आई कि एक ही शय जर्फ भी है और एक ही शय मजरूफ भी. जर्फ वो जिसके अंदर कोई चीज होती है, और मजरूफ वो जो उसके अंदर है. तो जो चीज अंदर है वो और होती है, और जो जर्फ होता है वो और. यानी यूं कहो जर्फ और है, मजरूफ और. लेकिन अगर फी नफ्सी ही की हा जमीर ये माना को राजे करें, तो फिर जरफियतु शैली नफ्सी ही लाजिम आता है, और ये बातिल है, दुरुस्त नहीं है. जर्फ भी वही, मजरूफ भी वही, एक ही चीज जर्फ भी है और मजरूफ भी है, ये बातिल है, ये नहीं हो सकता भाई. जर्फ और होता है और मजरूफ और. तो फिर आगे साहिब काफिया जिन्होंने ईज़ाह में इस जमीर को किसकी तरफ राजे किया, माना की तरफ, वो खुद ही इसे एतराज का जवाब भी देते हैं और फरमाते हैं कि यहां फी जरफियत के लिए नहीं आया, बल्कि यहां फी एतबार के माना में है. किस माना में है, यानी यहां एतबार का माना मलहूज है. तो मानन फी नफ्सी ही बाई माना हुआ, मानन बेअतबार ही फी नफ्सी ही, तो यहां एतबार का माना मलहूज है. तो यह यूं कहें कि ये फी जो है एतबार और नजर के माना में है. तो तर्जमा यूं होगा मानन फी नफ्सी ही, ऐसा माना जो साबित है बएतबार अपनी जात के, जो अपनी जात के एतबार से साबित है, ऐसा माना जो अपनी जात के एतबार से साबित है. या यहां एतबार वाला तर्जमा किया, जरा नजर वाला तर्जमा करो, ऐसा माना जो अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है. बिन नजरी इलैही फी नफ्सी ही, ऐसा माना जो अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है. यानी माना अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है, किसी अमरे खारिज की वजह से साबित, किसी अमरे खारिज के एतबार से साबित नहीं है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी, इब्तिदा का माना भी शुरू करना, मीन का माना भी शुरू करना, लेकिन लफ्ज इब्तिदा मैंने जैसे ही बोला आपको शुरू करने का माना समझ में आ गया, लेकिन मीन कहूंगा तो मीन का माना आपको खुद ब खुद समझ में नहीं आएगा। तो गोया इब्तिदा का माना अपनी जात के एतबार से ही साबित है, यानी खुद ही उस लफ्ज से समझ में आ रहा है, और मीन का माना खुद समझ में नहीं आएगा जब तक इसके साथ इसके मुताल्लकात को नहीं जोड़ेंगे। मसलन मैं आपके सामने कहता हूं, सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, मैं चला बसरा से कूफा तक। यहां मीन आया, इस मीन ने आपको बतला दिया कि ये सैर की इब्तिदा कहां से हो रही है, बसरा से। किस कहां से हो रही है, बसरा से सैर की। तो यहां अब मीन का माना समझ में आया, लेकिन अपनी जात के एतबार से नहीं, बल्कि सिरतु और बसरा के एतबार से। किसके एतबार से, सिरतु और बसरा के एतबार से। सिरतु और बसरा को खत्म करो, अकेला मीन कहो तो इसका माना समझ में नहीं आता। तो मीन का माना भी क्या है, शुरू करना, इब्तिदा का माना भी शुरू करना, लेकिन इब्तिदा का माना अपनी जात के एतबार से साबित है, किसी अमरे खारिज यानी अपने मुताल्लकात के एतबार से साबित नहीं। यहां मुताल्लकात जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जबकि मीन का माना अपनी जात के एतबार से नहीं साबित, बल्कि अपने मुताल्लकात यानी सिरतु और बसरा के एतबार से साबित है। सिरतु और बसरा हैं तो मीन का माना शुरू करना भी समझ में आ रहा है, वरना समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां फी किस माना में है, एतबार के माने में। तो माना अपनी जात के एतबार से साबित है, या यूं कहें माना अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है, किसी अमरे खारिज के एतबार से साबित नहीं। और फिर उसके बाद साहिब काफिया जो है, साहिब काफिया ने आगे अरबों का कलाम भी पेश किया कि हमने फी को एतबार के माना में लिया और कहा कि यह जरफियत के लिए नहीं है, बल्कि किस माना में है, एतबार के माना में है। कहते हैं ये हम अपनी तरफ से एक नया माना फी का नहीं बयान कर रहे, कलाम अरब में भी फी एतबार के माने में इस्तेमाल होता है। चुनांचे किसी घर के बारे में किसी को बतलाते हुए अरबी में कहते हैं, अद्दारु फी नफसिहा हुक्मुहा कजा। ये घर जो है, फी नफसिहा अपनी जात के एतबार से जो है, हुक्मुहा कजा, इसका हुक्म यह है, यानी इसकी कीमत यह है। यानी घर है, मसलन एक कनाल के अंदर एक घर बना हुआ है, बड़ा शानदार घर बना हुआ है। अब दूसरा शख्स बतलाता है, घर फरोख्त करने वाला या किसी आदमी को बतलाता है कि यह घर जो है अपनी जात के एतबार से, यानी जो इस पर मेटीरियल लगा है और जिस तरह की इसकी तामीर हुई है, उस तामीर के एतबार से इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। और अगर इसके साथ आप खारिजी चीजों को भी मिलाओ कि यह घर फला मोहल्ले में है या फला शहर के फला खास इलाके के अंदर है, तो फिर तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है भाई। हां, अपनी जात के एतबार से मसलन इसकी कीमत इतनी है, अमरे खारिज का एतबार ना करो, सिर्फ इसके मटेरियल, इसकी बनावट, इसकी तामीर वगैरह को देख लो, तो अपनी जात के एतबार से इसकी कीमत इतनी है। और अगर उमूरे खारिजिया को साथ मिलाओ कि ये किस मोहल्ले में है, किस जगह पर है, और या इसके फलां फलां बड़े लोग इसके पड़ोस में आबाद हैं, तो उस एतबार से तो इसकी कीमत और ज्यादा है भाई। तो अरबी में भी फी किस माना में इस्तेमाल होता है, एतबार के माना में इस्तेमाल होता है कि अद्दारु फी नफसिहा हुक्मुहा कजा, के ये घर जो है अपनी जात के एतबार से उसकी कीमत यह है। तो देखो, दार है मौजूद फिल खारिज, और माना जो होता है वो मौजूद फिल जहन है। माना कहां होता है, जहन में, और दार कहां पर है, खारिज। तो जैसे खारिज के अंदर जो चीजें हैं उनमें भी कभी अमरे खारिज का एतबार उनके साथ किया जाता है, कभी उनके साथ अमरे खारिज का एतबार नहीं किया जाता। इसी तरह जो माना है, माना जो जहन में आता है, कभी उसमें अमरे खारिज का एतबार होगा और कभी अमरे खारिज का एतबार नहीं होगा। तो मानन फी नफसी ही, ऐ मानन फी नफसिल माना का मतलब आपको समझ में आ गया कि माना अपने जात के एतबार से साबित है, माना अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है, किसी अमरे खारिज के एतबार से साबित नहीं। कहते हैं जब यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो आपको हर्फ की तारीफ भी समझ आ जानी चाहिए। यह कौन फरमा रहे हैं, साहिब काफिया इजाह के अंदर कहते हैं, हर्फ में क्या कहते हैं, अल हर्फु मा दल्ला अला मानन फी गैरी ही, वहां फी गैरी ही का लफ्ज लेकर आते हैं। भाई ये क्या माना, हर्फ ऐसे माना पर दलालत करता है जो इसके गैर में होता है, इसका मतलब है हर्फ के अपने अंदर कोई माना नहीं होता। कहते हैं नहीं भाई, अब आपको यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए। जैसे वहां फी नफ्स ही में फी एतबार के माना में था, यहां पर भी फी गैर ही किस माना में है, एतबार के माना में है। यानी हर्फ मा दल्ला अला, हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है अला मानन, ऐसे माना पर, फी गैरिहा जो साबित है उसके गैर के एतबार से, जो उसके गैर के एतबार से साबित है, यानी उसके मुतालक के एतबार से साबित है। खुद मिन के एतबार से शुरू करना नहीं साबित, बल्कि उसके जो मुतालक हैं सिरतु और बसरा उनके एतबार से क्या है शुरू करना का माना साबित है। तो फी गैरिही का क्या माना कि वो माना गैर में नहीं है, फी यहां पर भी जरफियत के लिए नहीं है बल्कि किस माना में है, एतबार के माना में है कि वो माना गैर के एतबार से साबित है, यानी इस हर्फ के गैर। और इस हर्फ के गैर से कौन मुराद है, हर लफ्ज मुराद है या इसके मुतालकात मुराद हैं? इसके मुतालकात मुराद हैं कि वो जिक्र होंगे तो इसका माना समझ में आ जाएगा। जैसे मिन के साथ सिरतु और बसरा जिक्र हुए तो इसका माना समझ में आ गया। तो हर्फ का माना साबित होता है गैर के एतबार से, यानी अपने मुतअल्लक के एतबार से साबित होता है, खुद साबित नहीं होता। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि आगे वह महसूलहू जो है, यहां से महसूल और हासिल की बहस शुरू हो रही है। महसूल और हासिल कह लें या हासिल और महसूल कह लें, ये दोनों लफ्ज आगे जिक्र होंगे भाई, वह महसूलहू भी और आगे 8-10 सत्रों के बाद वल हासिल भी आएगा। तो ये महसूल और हासिल की बहस आ रही है शरह जामी में, और मैंने आपको बतलाया था कि यह शरह जामी की मुश्किल तरीन बहस है भाई, और बे इंतहा पेचीदा है। उलमा ने इसको हल करने के लिए बड़ी मेहनत की है, अल्लाह उन सबको उनकी मेहनतों की जजा नसीब फरमाए, और उन तकारीर से यह मकाम हल हो जाता है, वरना बड़ा पेचीदा है भाई, बड़ा पेचीदा। फिर मैंने आपको वजह भी बतलाई थी कि शारह जामी की तो आदत नहीं है कि वो ज्यादा लंबी बात करें और इतनी पेचीदा और इतनी तवील बहस को लेकर आए, तो अपनी आदत के बरखिलाफ उन्होंने इतनी पेचीदा और इतनी तवील बहस यहां क्यों की। मैंने बतलाया था इसके उलमा ने कई वजूहात जिक्र की हैं, तीन वजहें मैंने आपको बतलाई थी कि कम अज कम ये तीन वजहें आप जहन में रखें। पहली वजह यह कि इसम की तारीफ में फी नफसी ही आया और हर्फ की तारीफ में आगे फी गैरी ही आएगा भाई, तो साहिब जामी आपको बतलाना चाहते हैं माना जो है फी नफसी ही होना और माना फी गैरी ही होना, इन दोनों का क्या मतलब है, तो वो उसकी वजाहत करना चाहते हैं, तो इसलिए शारह जामी इतनी तवील बहस लेकर आए। और दूसरी वजह यह कि वो बाज उलमा का रद्द करना चाहते हैं। बाज उलमा ने क्या फरमाया है कि जैसे इसम और फेल अपने माना पर खुद दलालत करते हैं, फी नफसी ही दलालत करते हैं, इसी तरह हर्फ भी अपने माना पर फी नफसी ही यानी खुद दलालत करता है। तो साहिबे जामी उनका रद्द करना चाहते हैं कि नहीं, दोनों में फर्क है भाई, दोनों अपने माना पर खुद दलालत नहीं करते, बल्कि इन दोनों में 5 फर्क हैं। एक ये कि ये दोनों माना के एतबार से भी मुख्तलिफ हैं, इनमें फर्क है। ये दोनों लफ्जों के एतबार से भी इनमें फर्क है, हुक्म के एतबार से भी इन दोनों में फर्क है, इस्तेमाल के एतबार से भी इन दोनों में फर्क है, और वजह के एतबार से भी इन दोनों में फर्क है कि एक माना के लिए वजह है, दूसरा दूसरे माना के लिए वजह है। तो 5 फर्क इसमें वो बतलाएंगे इस पूरी बहस के अंदर कि इसम और हर्फ दोनों माना के एतबार से भी मुख्तलिफ हैं। इसम का माना मुस्तकिल बिल मफहूम होता है, मुस्तकिलन समझ में आता है इसम से, और हर्फ का माना मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं होता, हर्फ से मुस्तकिलन माना समझ में नहीं आता। दोनों के लफ्जों में भी फर्क है, इसम जो है वो अपने माना पर दलालत करने के लिए मुतअल्लिकात का मोहताज नहीं, जैसे ही लफ्ज इब्तिदा कहा आपको शुरू करना समझ में आ गया, लेकिन मीन का लफ्ज ये अपने मुतअल्लिकात का मोहताज है, फिर ही ये अपने माना यानी शुरू करने पर दलालत करेगा। इसके साथ सिरतु और बसरा जिक्र करेंगे तो इससे शुरू करने का माना समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं। तो माना में भी दोनों मुख्तलिफ, लफ्जों में भी मुख्तलिफ, और हुक्म के अंदर भी दोनों मुख्तलिफ हैं, यानी इसम वो महकूमुन अलैह भी बन सकता है और महकूमुन बिही भी बन सकता है, जबकि हर्फ न वो महकूमुन अलैह बन सकता है और न महकूमुन बिही बन सकता है। और इस्तेमाल के अंदर भी दोनों मुख्तलिफ हैं इसम और हर्फ, कि इसम जो है वो अपने माना के समझने और समझाने में मुतअल्लिकात के साथ इस्तेमाल इसका जरूरी नहीं है, जबकि हर्फ जो है उसमें उसका माना समझने और समझाने के लिए उसका इस्तेमाल मुतअल्लिकात के साथ जरूरी है भाई। और वजा के अंदर भी दोनों के अंदर फर्क है कि इसम जो है उसको एक माने कुल्ली के लिए वजा किया गया है और हर्फ जो है उसको जुजियात के लिए वजा किया गया है कि वो मानिए जुजिया पर दलालत करता है। जैसे इंसान क्या है कुल्ली और जैद अमर बकर क्या है जुजियात, तो जैसे एक कुल्ली होती है और एक जुजी, इसी तरह इसम का माना क्या है वो कुल्ली है और हर्फ का माना जुजी है भाई। आगे इसकी वजाहत आ जाएगी भाई। तो ये दूसरी वजह, पहली वजह क्या, ये बहस इतनी तवील क्यों लाए कि फी नफसी ही और फी गैरी ही का माना बतलाना चाहते थे। दूसरी वजह ये कि बाद उलमा का रद्द करना चाहते थे जिन्होंने क्या फरमाया था कि इसम और हर्फ दोनों अपने माना पर खुद दलालत करते हैं। और तीसरी वजह यह है कि इमाम राजी रहमहुल्ला ने इसम और हर्फ की तारीफ पर बड़े पेचीदा और मुश्किल एतराजात किए हैं। उन्होंने इसम की बहुत सारी तारीफात जिक्र की और बड़े मुश्किल और पेचीदा एतराजात किए। और मैंने बतलाया था कि ये उलमाए नह पर बहुत बड़ा इश्काल था कि उन्होंने इसम की बहुत सारी तारीफें की हैं लेकिन कोई एक भी तारीफ ऐसी नहीं है जिस पर एतराजात वाके ना हो, कोई ऐसी तारीफ जो जामिया हो, मान्या हो और एतराजात से महफूज हो, ऐसा नहीं है। इसम की तारीफात पर बड़े बड़े एतराजात हुए, हत्ता कि इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन ने कोई 70 के लगभग इसम की तारीफें की हैं लेकिन उनमें से एक भी सही तारीफ नहीं है, सब पर एतराजात होते हैं। इसी तरह अल्लामा इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसम की एक भी तारीफ सही नहीं है। इसी तरह इमाम राजी ने बड़े बड़े मुश्किल और पेचीदा एतराजात किए हैं इसम पर और इसी तरह हर्फ पर भाई। और मैंने यह भी बतलाया कि इमाम सीबुए के बारे में भी उलमा लिखते हैं कि इमाम सीबुए भी इसम की जामे मानिया तारीफ नहीं जानते थे, चुनांचे उन्होंने अपनी किताब में फेल की भी तारीफ की है, हर्फ की भी तारीफ की है लेकिन इसम की तारीफ नहीं की। लेकिन मैंने बतलाया ये कोई ऐब नहीं है। वजह यह कि बाज औकात एक चीज इतनी जाहिर होती है कि बच्चा बच्चा उसको समझता है और जानता है, हर शख्स उसको जानता है, लेकिन उसकी जामे माने तारीफ करना यह बड़ा ही मुश्किल काम होता है क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा वाजे होती है तो उसकी तारीफ करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि सूरज सबसे ज्यादा रोशन और चमकदार ऐन दोपहर के वक्त होता है और इस वक्त कोई नजर उसकी तरफ नहीं देख सकती, देखो सबसे नुमाया है लेकिन कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता। इसी तरह कभी कोई चीज बहुत नुमाया होती है लेकिन उसकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे दूसरी मिसाल मैंने जिक्र की थी, जैसे नूर है इसी तरह सुरूर है। नूर रोशनी को कहते हैं भाई, रोशनी को बच्चा बच्चा जानता है लेकिन रोशनी की हकीकत क्या है इसकी हकीकत में उलमा परेशान है भाई। तो इसी तरह खुशी, सुरूर भाई खुशी, खुशी बच्चा बच्चा जानता है खुशी किसे कहते हैं लेकिन खुशी की हकीकत क्या है, इसकी तारीफ क्या की जाए, यह बड़ा ही मुश्किल काम है, उलमा इसमें परेशान है भाई। बात समझ में आई? तो इसी तरह इसम भी चूंकि बहुत वाजे और नुमाया था तो उसकी तारीफ बड़ी मुश्किल थी। और मैंने बतलाया कि यहां पर यह हासिल महसूल की बहस इसके जरिए साहिब जामी जो हैं वो आपको यह बतलाना चाहते हैं कि जो साहिब काफिया और साहिब मुफस्सल ने इसम की तारीफ की है, दोनों की तारीफ एक ही है तकरीबन, इन्होंने जो इसम की तारीफ की है वो हर एतबार से जामिया मानिया भी है और एतराजात से महफूज भी है। चुनांचे ये हासिल और महसूल की बहस में वह महसूलहू इसके तहत वो मीर सैयदुस्सनद की इबारत लाएंगे। मीर सैयदुस्सनद जिनको मीर सैयदुशरीफ भी कहते हैं, ये नहमीर वाले, इनकी इबारत लाएंगे और वो फिर फलसफी उसूलों के मुताबिक वजाहत करेंगे, इसम और हर्फ में फर्क बयान करेंगे भाई, इसम और हर्फ में। और फिर आगे वल हासिल के बाद जो है शारह जामी अपनी तकरीर साथ मिलाएंगे और मुकम्मल वजाहत कर देंगे कि इसम और हर्फ दोनों अलग अलग हैं और ये जो तारीफ हुई इनकी जामिया भी है और मानिया भी है और हर किस्म के एतराजात से महफूज भी है। तो मीर सैयदुस्सनद और मुल्ला जामी रहमहुल्ला इन दोनों का उलमाए नह पर अजीम एहसान है कि उलमाए नह पर एक बड़ा ऐब और एतराज होता था, क्या उलमाए नह आपके यहां सबसे ज्यादा बहसें इस्म की हैं आपकी किताबों में, लेकिन आपको इस्म की जामे माने तारीफ ही नहीं आती। तो इन्होंने हक अदा कर दिया सबकी तरफ से और बतला दिया कि इसम और हर्फ की जो तारीफ की गई है वो जामिया भी है, मानिया भी है और हर किस्म के एतराजात से सलामत भी है। बात समझ में आ गई। तो आज हम ये हासिल महसूल की बहस शुरू करेंगे। भाई देखिए भाई, किताब पर हुआ महसूलुहु माजा करहु बाजुल मुहक्किकीन हैसु काल कमा अन्न फिल खारिज मौजूदन कायमन बिजातिही व मौजूदन कायमन बिगैरिही कदालिक फिल ज़हनि माकूलुन हुआ मुद्रकुन कस्दन मलहूजन फी जातिही यस्लुहु अन युहकम अलैही व बिही व माकूलुन हुआ मुद्रकुन तबअन व आलतुन लिमुलाहजति गैरिही फला यस्लुहु लिशैइन मिन्हा। तो ये महसूल हासिल की बहस शुरू हो रही है। याद रखो इस बहस के छह हिस्से हैं, इस बहस के छह हिस्से हैं, उन पर जरा निशान लगा लो। जब कलाम तकसीम हो जाएगा, छह हिस्से बन जाएंगे, तो फिर आपके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। भाई मैंने बताया ये मुश्किल तरीन बहसों में से है, दुआ करो अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए आसान फरमाए। भाई देखो व महसूलुहू, यहां से शरा का पहला हिस्सा है। व महसूलुहू से शरा का पहला हिस्सा है। छह हिस्से बनाएंगे हम, यह है पहला हिस्सा। दो तीन सत्रों के बाद आ रहा है फल इब्तिदा उ मसलन। भाई फल इब्तिदा उ मसलन मिल गया, दो सत्रों के बाद है फल इब्तिदा उ मसलन, ये दूसरा हिस्सा है शरा का। निशान लगा लिया। आगे पांच छह सत्रों के बाद है वल हासिलो, वल हासिलो, ये तीसरा हिस्सा है शरा का। फिर इससे पांच छह सत्रें आगे है व इजा आरफ्ता हाजा, व इजा आरफ्ता हाजा, मिल गया भाई, ये चौथा हिस्सा है शरा का। व इजा आरफ्ता हाजा, निशान लगा लिया भाई, ये शरा का चौथा हिस्सा है। इससे आगे दो तीन सत्रों के बाद है फफी हाजल किताबी, ये शरा का पांचवां हिस्सा है। और इससे फिर चार पांच सत्रें आगे है व बीमा सबका मीनत तहकीक, व बीमा सबका मीनत तहकीक, ये शरा का छठा हिस्सा है। निशान लगा लिए। तो ये छह हिस्से कर लिए हमने इसके, अब इसको समझना आसान होगा। कितने हिस्से हैं? छह। पहला हिस्सा व महसूलुहू से है, दूसरा हिस्सा फल इब्तिदा से है, तीसरा हिस्सा वल हासिल से है, चौथा हिस्सा व इदा आरफ्त हाजा से है, पांचवा हिस्सा फफी हादल किताबी यहां से है, और छठा हिस्सा व बीमा सबका मिन तहकीक जहरा जी यहां से है। भाई निशान लगा लिए अच्छी तरह। अब देखिए, देखो ये जो बहस शुरू हो रही है व महसूलुहू से लेकर वल हासिल तक, तो ये वलहासिल से माकबल तक, ये मीर सैयदुस सनद की तकरीर इसमें जिक्र करेंगे। इस वल महसूल में किसकी तकरीर जिक्र करेंगे? मीर सैयदुस सनद की तकरीर जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस तरह इस इसम और फेल के अंदर फर्क को जिक्र किया है और उसको समझाने की कोशिश की है। और वलहासिल से आगे जो है फिर शारह जामी अपनी तकरीर करेंगे और फिर इस मकाम की मुकम्मल वजाहत हो जाएगी। भाई कुछ तकरीर किसकी हो गई? मीर सैयदुस सनद की, और कुछ तकरीर किसकी हो गई? अल्लामा जामी की। तो मकाम बेहतरीन हल हो जाएगा। भाई भाई इधर देखिए, वह महसूलुहू, यह शरा का पहला हिस्सा है। महसूल याद रखो, महसूल बमाने हासिल के है, महसूल बमाने हासिल के है। महसूलुल कलाम, हासिलुल कलाम, और मुहस्सलुल कलाम सबका एक ही माना है। तो महसूल किस माना में है? हासिल के माना में है। आपको एक अजीब नुक्ता बतलाऊं भाई, अजीब नुक्ता आपने पढ़ा है, एक होता है इसमें फाइल, एक होता है इसमें मफूल। भाई जरा भाई अजीब उजारबन, इसमें फाइल क्या आया? जारिबुन, ये जारिबुन, फातिहुन, मुकरिमुन, ये क्या है? इसमें फाइल। और मजरूबुन, मफतूहुन, मुकरमुन वगैरह, ये है इसमें मफूल। याद रखो कभी कभार इसमें फाइल जो है खिलाफुल कियास मफूल के वजन पर भी आ जाता है। कभी कभार इसमें फाइल खिलाफुल कियास मफूल के वजन पर भी आ जाता है। जैसे ये महसूल बमाने हासिल के है, वजन तो कौन सा? मफूल वाला, लेकिन ये क्या है? इसमें फाइल है। बात समझ में आ गई। और भी कलाम अरब में ऐसा होता है लेकिन कलील होता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कान वअदुहु मअतियन, देखो मअतियन इसमें मफूल है बरवजन मरमियन भाई, तो कान वअदुहु मअतियन ऐ आतियन भाई, ये वजन तो इसमें मफूल का है लेकिन दरअसल क्या है? इसमें फाइल है भाई, ये इसमें फाइल है। मातियन बमाने आतियन के। या दूसरी मिसाल ले लें, जैसे हिजाबुन मस्तूरुन कुरान में है, हिजाबुन मस्तूरुन, ये मस्तूर इसमें मफूल बजाहिर लग रहा है लेकिन दरअसल ये इसमें फाइल है। ऐसातिरन, हिजाबन मस्तूरन ऐसातिरन, हिजाब पर्दा और सातिर छुपाने वाला, ढांपने वाला, हिजाबन मस्तूरन ऐसातिरन, ऐसा पर्दा जो ढांपने वाला है। हिजाबन मस्तूरा, वैसे तो लफ्जी तर्जमा बनता है ऐसा पर्दा, मस्तूरन के उस पर्दे को भी ढांपा गया हो, उस पर्दे को भी, वो पर्दा भी क्या हो? मस्तूर है। हालांकि नहीं, ये मस्तूर किस माना में है? सातिर के माने में, यानी ऐसा पर्दा सातिरन जो ढांपने वाला है, छुपाने वाला है। बात समझ में आ गई। और इसी तरह याद रखो कलाम अरब में कभी इसमें मफ़ऊल जो है वो खिलाफुल कियास इसमें फाइल के वजन पर भी आ जाता है। पहले तो था मातियुन, किस माना में था? आतिन के माना में था। और मस्तूर किस माना में था? सातिर। और महसूल किस माना में था? हासिल। और कभी इसका बरअक्स होता है, होता इसमें मफ़ऊल है लेकिन खिलाफुल कियास किस वजन पर आता है? इसमें फाइल के वजन पर। जैसे सिर्रुन कातिमुन, सिर्रन कातिमुन, सिर्रन कहते हैं रास को, और कातिमुन कतमा यक्तुमु के माना छुपाना, तो ये कातिम बमाने मक्तूम के है। सिर्रन कातिमुन आई मक्तूमुन, ऐसा राज मक्तूमुन जिसको छुपाया गया है यानी पोशीदा है। तो ये कातिम किस माना में? कातिम बजाहिर इसमें फाइल लग रहा है लेकिन दरअसल ये क्या है? इसमें मफूल है। या दूसरी मिसाल ले लो, जैसे माउन दाफिकुन, माउन दाफिकुन, ये दाफिक बमाने मदफूक के है। माउन मदफूकुन, ऐसा पानी जिसको उछाला गया है। तो यहां पर भी इसी तरह है, ये महसूल बमाने हासिल के है। वह महसूलहू, ये महसूलहू की हाज अमीर, इसमें दो एहतमाल हैं। एक एहतमाल तो यह है कि यह राज है मा कालहू बनुल हाजिब, वो जो अल्लामा इब्ने हाजिब ने फरमाया है ईजाह के अंदर भाई, ये साथ ही दो तीन सत्रें जो गुजरी हैं अभी अभी इस महसूलहू से पहले, ये जो अल्लामा इब्ने हाजिब का कलाम है कि उन्होंने क्या फरमाया था, अज़मीर फी मा दल्ला अला मानन फी नफसी ही, यहां से जो इनका कलाम शुरू हो रहा है इसकी तरफ राजे करें। जो अल्लामा इब्ने हाजिब ने फरमाया उसका हासिल यह है, अब आगे उसकी तशरी करने लगे हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि महसूलहू की हा जमीर मा कालहू बनुल हाजिब व मा कालहू शारह की तरफ लौटाएं, यानी शारह और मातिन दोनों ने जो फरमाया है उस सारे की तरफ लौटाएं इस जमीर को, कि शारह और मातिन जो कलाम है उसका महसूल यह है। इस सूरत में यह जो इसम की तारीफ शुरू हो रही है अलिस्मु मा दल्ला ऐ कलिमतुन दल्लत से लेकर महवा महसूलहू से पहले तक, ये सारी इबारत की तरफ इशारा है कि इसमें इसम की तारीफ भी आ गई, फिर इसके अंदर शारह यानी मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ने उसकी तशरी भी की और बतलाया कि मादल्ला से क्या मुराद है, कलिमतुन दल्लत, और फी नफसी ही क्या है, माना की सिफत है, और फी नफसी ही की जमीर किसको राजे की, मां दल्ला को राजे कर दी, तो उनका कलाम भी आ गया। और फिर आगे साहिब काफिया की ईजाह वाली इबारत भी आ गई कि उन्होंने फी नफसी ही कि हाज अमीर किसको राजे की है, माना को राजे की है। तो इस सारे का हासिल यह है, अब तशरी करने लगे हैं। और यह ज्यादा मुनासिब है कि दोनों की तरफ ये जो इब्ने हाजिब और शारह ने फरमाया है, इस सारे की तरफ इस जमीर को राजे किया जाए, क्योंकि आगे आगे वो इस बात को भी जिक्र करेंगे कि फी नफसी ही कि हाज अमीर चाहे कलिमा को राजे करें चाहे माना को राजे करें, दोनों सूरतों में एक ही माना बनता है। मालूम हुआ इस सारे की वो तशरीह करना चाहते हैं, जो इब्ने हाजिब ने फरमाया उसकी भी, और जो शारह यानी मुल्ला जामी ने खुद फरमाया उसकी भी तशरीह करना चाहते हैं। तो कहते हैं वह महसूलहू मा ज़करहू बाज़ुल मुहक्किकीन, तो कहते हैं वह महसूलहू, और महसूल उसका जो अल्लामा इब्ने हाजिब और शारह मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ने फरमाया है, उसका हासिल यह है मा ज़करहू बाज़ुल मुहक्किकीन, वो है जिसको बाज़ मुहक्किकीन ने जिक्र किया। मैंने आपको अभी बतलाया कि वह महसूलहू के बाद ये वल हासिल तक, इसमें मीर सैयदुस्सनद की इबारत जिक्र करेंगे। मीर सैयदुस्सनद ने फलसफी उसूलों के मुताबिक माने इस्मी और माने हर्फी की तफसील बयान की, उसकी वजाहत की, और फिर आगे वल हासिल से आगे जो है मुल्ला जामी रहमतुल्लाह नहवी उसूलों के मुताबिक उसकी मुकम्मल फिर वजाहत कर देते हैं। तो यह पहला हिस्सा है शरा का भाई। तो इस पहले हिस्से के अंदर वो माकूल को महसूस के साथ तशबी देकर उसकी वजाहत करेंगे। भाई एक है महसूस, ये जो महसूस जो हमें चीजें खारिज में ये जो चीजें हैं ये हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे देखो ये पंखा है, ये मस्जिद है, ये किताब है, ये कलम है, ये पहाड़ हैं, ये बादल हैं, ये सब चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, इनको कहते हैं महसूस। भाई क्या कहते हैं? महसूस। और एक वो चीज जो हमारे जहन में आती है, वो जो माना और जो मफहूम हमारे जहन में आता है वो है माकूल। भाई वो क्या है? माकूल। बल्कि यूं कहो कि यहां दो जर्फ हैं भाई। एक जर्फ है खारिज का, जर्फ क्या है? खारिज का। और इसके अंदर ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं ये खारिज इनके लिए जर्फ है। ये पंखा भी खारिज में मौजूद है, ये किताब भी खारिज में मौजूद है, ये पहाड़ भी खारिज में मौजूद है, तो ये खारिज इनके लिए जर्फ है। तो ये जो महसूसात हैं इनके लिए खारिज जर्फ है, और ये जो मानी हमारे जहन में आते हैं तो ये जहन उनके लिए जर्फ है भाई। तो दो जर्फ हो गए, एक जर्फ क्या? खारिज, और एक जर्फ क्या? जहन। खारिज में ये चीजें हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, और जहन में वो चीजें हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, जो मुख्तलिफ चीजों की पहचान, उनके मानी और उनकी सूरतें हमारे जहन में आती हैं, ये सब माकूल हैं। ये सब क्या हैं? माकूल हैं। तो माकूल जो है वो हमारे जहन में है, और महसूस जो है खारिज में जो हमें नजर आ रहा है। तो अब देखो माना, एक है माना इस्मी, एक है माना हर्फी। माना इस्मी भी कहां पर आता है? जहन में। माना हर्फी भी कहां आता है? जहन में। लेकिन दोनों में फर्क है। माना इस्मी जो है वो अपनी जात के एतबार से मुआतबर है, और माना हर्फी वो अपनी जात के एतबार से मुआतबर नहीं है, बल्कि वो मुतअल्लिकात के एतबार से मुआतबर है। मुतअल्लिकात होंगे तो हर्फ का माना समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। तो ये माने हर्फी हमारे जहन में है, ये हमें नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? तो आपको मीर सैयदुस्सनद बतलाएंगे कि जैसे महसूस जो हमें चीजें दिखाई देती हैं ये दो किस्म की हैं, इसी तरह वो माना जो हमारे जहन में है वो भी दो किस्म पर है। यानी वो जो माकूल है उसको तशबीह देंगे किसके साथ? महसूस के साथ। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो जरा जल्दी समझ में आ जाती हैं, और माना तो है जहन में, वो तो हमारी नजर से ओझल है, छुपा हुआ है, वो है खफी, और ये चीजें क्या हैं? जाहिर। तो वो जो खफी चीजें हैं, खफी माना, वो जो खफी चीज है उसको किसके साथ तशबीह देंगे? जाहिर के, जो चीजें जाहिर हैं, ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भाई। तो माकूल को किससे तशबीह देंगे? महसूस से, और उसकी वजाहत करेंगे। या और दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि खफी को, जो पोशीदा चीज है, उसको जाहिर के साथ तशबीह देकर उसकी वजाहत करेंगे। चुनांचे मीर सैयदुन सनद फरमाते हैं कि जैसे आप अपने खारिज में देखते हैं वो जो चीजें मौजूद हैं वो दो किस्म की हैं। वो कितनी किस्म की हैं? वो दो किस्म की हैं। कुछ वो चीजें हैं जिनका अपना अलग वजूद है, वो अपने वजूद में किसी गैर की मोहताज नहीं है और उनको हम जौहर कहते हैं और उसको कायम बिज़ात कहते हैं। मसलन आप हैं, आपका अपना अलग वजूद है भाई, तो आप क्या हैं? जौहर हैं, और आपको कायम बिज़ात कहेंगे कि आपका अपना अलग वजूद है। यह जैसे किताब है, किताब का अपना अलग वजूद है, यह अपने वजूद में किसी दूसरी चीज की मोहताज नहीं। कलम है, कलम का अपना अलग वजूद है, यह अपने वजूद में किसी दूसरी चीज की मोहताज नहीं। पहाड़ है, पहाड़ का अपना वजूद है, वह अपने वजूद में किसी दूसरी चीज का मोहताज नहीं। तो इनको जौहर कहते हैं और इसी तरह इनको कायम बिज़ात कहते हैं कि अपनी जात के एतबार से कायम है, यानी मौजूद हैं। और कुछ चीजें वो हैं, वो सिफात हैं और आराज हैं, इनका अपना अलग कोई वजूद नहीं होता। ये गैर के लिए सिफत बनती हैं, वो गैर है तो इन सिफात का वजूद भी है, वो गैर नहीं तो इन सिफात का अपना अलग कोई वजूद नहीं। जैसे जैद की सिफत है सखावत, जैद है तो जैद की सखावत भी है, जैद नहीं तो जैद की सखावत भी नहीं। इसको कहते हैं आरज भाई, क्या कहते हैं? आरज यानी सिफत, और इसको कायम बिल गैर कहते हैं, यानी ये गैर यानी मौसूफ के साथ कायम होती है। यह सिफत मौसूफ है तो इस सिफत का भी वजूद है, मौसूफ नहीं तो इसका वजूद भी नहीं है। दूसरी मिसाल ले लो आरज की, ये जो चीजों के रंग हमें दिखाई देते हैं, याद रखो ये भी आरज है, सिफत है, इनका अपना अलग कोई वजूद नहीं। जैसे दीवार का यह सफेद रंग है, ये दीवार की सिफत है, इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं। दीवार का तो अपना वजूद है, ये तो जौहर है, ये तो कायम बिज़ात है, ये अपने वजूद में गैर की मोहताज नहीं। लेकिन ये जो सफेदी है दीवार पर, ये दीवार की सिफत है, ये कायम बिल गैर है, ये दीवार है तो ये वाली सफेदी है, दीवार नहीं तो ये वाली सफेदी भी नहीं है। आपके जहन में इश्काल आएगा कि भाई हम तो सफेदी को अलग भी देखते हैं, हम बाजार से सफेदी लेकर आते हैं और फिर दीवार पर सफेदी करते हैं, या बाजार से हम पेंट का एक डब्बा लेकर आते हैं और फिर इस दीवार पर पेंट करते हैं। तो याद रखना, नहीं भाई, ये जो बाजार से आप सफेदी लेकर आते हैं, ये कुछ सफेदी, ये अलग चीज नहीं है, ये एक खास किस्म की मिट्टी है, और इस मिट्टी के हर हर जर्रे में, हर हर जर्रे की सिफत सफेदी है, हर हर जर्रे की क्या है? सिफत सफेदी है। इसी तरह आप बाजार से पेंट का डब्बा लाते हैं, उसके अंदर वो सफेद रंग होता है, आप कहेंगे देखो ये तो सफेद रंग बिल्कुल अलग है, आपने तो हमें कहा था सफेदी का अपना अलग वजूद नहीं। नहीं भाई, ये सफेदी, ये जो डब्बे के अंदर है, ये केमिकल है, ये खास मादा है, और उसके हर हर जर्रे की सिफत क्या है? सफेदी है, सफेदी कोई अलग चीज नहीं। देखो आप इसका तजर्बा करके आराम से पहचान सकते हैं, आप सफेद पेंट का एक डब्बा ले आए, अब आप यूं करें उसके अंदर एक कप नीला रंग डाल दें और फिर इसको खूब मिक्स कर दें, आप देखेंगे सारा डब्बा नीले रंग का हो गया। भाई वो सफेदी किधर गई? वो सफेदी किधर गई? अगर उसका अपना अलग वजूद होता तो नीला रंग डाला था, सफेदी निकलकर अलग हो जाती? नहीं, अब वो सारी सफेदी किससे बदल गई? नीले रंग से बदल गई। मालूम हो वो सफेदी एक एक जर्रे की सिफत थी, आपने वो सिफत बदल दी, वो खत्म हो गई सफेदी, उसका अपना अलग कोई वजूद था ही नहीं, अब हर हर जर्रे की सिफत नीला रंग बन गया, वो हर जर्रा नीले रंग का है। बात समझ में आ रही है? तो मालूम हुआ ये जो सफेदी, ये जो चीजों के रंग हैं, ये आराज हैं, सिफात हैं, इनका अपना अलग वजूद नहीं। तो जिस तरह खारिज में जो चीजें मौजूद हैं वो दो किस्म की हो गई, कुछ कायम बिज़ात हैं और कुछ कायम बिल गैर हैं। इसी तरह हम जब किसी चीज का इदराक करते हैं, वो चीज जहन में आती है तो वो माकूल है भाई, किस में आ गई? अकल में आ गई, माकूल जो अकल में आया, जो मालूम हुआ। तो ये जो माकूल है, जो हमारे जहन में आता है, ये भी दो किस्म पर है। कुछ माकूल वो हैं जो बिज़ात मुद्रक होते हैं, यानी कसदन अकल की उनकी तरफ तवज्जो होती है और वो हमारे जहन में आ जाते हैं, हम उनका इदराक कर लेते हैं। और कुछ माकूलात वो हैं कि जिनका इदराक अकल कसदन नहीं करती, बल्कि तबअन उनका इदराक हो जाता है, तबअन उनका इदराक हो जाता है और अकल उनको आला बनाती है दूसरे मुदरकात को जानने के लिए। तो जो है कि जिस तरह महसूस चीजें दो किस्म पर हैं, कुछ कायम बिल जात हैं, कुछ कायम बिल गैर, इसी तरह जो मुदरका मुदरक अदरक युद्री को इदराक का माना है जानना, जानना तो मुदरक बमाने मालूम के है, जो चीज हमें मालूम हुई हमारे जहन में आ गई, हमने उसको पहचान लिया, या जो देखो हमें आंखों से जो कुछ नजर आता है जहन में फौरन उसकी पहचान आ जाती है कि ये फलां चीज है या फलां चीज है या फलां चीज है। तो हमारे जहन में जो चीजें आती हैं वो क्या हैं, माकूल। भाई माकूल आम है यहां पर, इससे तमाम चीजें जो जहन में आती हैं वो आ गई, चाहे कुलियात हो चाहे जुजियात हो, सब इसमें दाखिल हैं भाई। तो ये जो माकूलात हैं ये भी दो किस्म पर हैं, कुछ वो हैं जो मुदरक हैं कसदन और बिज़ात, यानी अकल उनकी तरफ बिज़ात तवज्जो करती है और फिर वो अकल में आते हैं, तो गोया वो अपनी जात के एतबार से मलहूज होते हैं कुछ मुदरक, कुछ मुदरकात, कुछ मुदरक जो हैं उनका इदराक कसदन होता है और अकल उनकी तरफ कसदन तवज्जो करती है और वो अपनी जात के एतबार से मलहूस होते हैं, और ये जो मुदरकात हैं जिनकी तरफ अकल कसदन तवज्जो करती है और वो अपनी जात के एतबार से वो मलहूस होते हैं, ये महकूमुन अलैह भी बन सकते हैं और महकूमुन बिही भी बन सकते हैं। और कुछ मुदरकात वो हैं कि जो हमें तबअन जिनका हम इदराक करते हैं, कसदन नहीं, इरादा नहीं होता, लेकिन तब अन वो उनका भी क्या कर लेती है, अकल इदराक कर लेती है, और वो आला होते हैं दूसरी चीजों के इदराक के लिए, दूसरी चीजों के इदराक के लिए वो आला होते हैं। और ये जो तब अन मुदरक हुए और जो दूसरी चीजों के इदराक के लिए आला बने, ये वाले जो मुदरकात हैं ये न महकूमुन अलै बन सकते हैं और न महकूमुन बिही, क्योंकि महकूमुन अलैह और महकूमुन बिही वही बनेगा जो कसदन मुदरक हो, जिसकी तरफ अकल की तवज्जो हो, और जिसकी तरफ अकल की तवज्जो ही नहीं है वो महकूमुन अलैह या महकूमुन बिही नहीं बन सकता। मसलन मैं कहता हूं जैदुन आलिमुन, मैंने किस पर हुक्म लगाया, जैद पर, और क्या हुक्म लगाया, आलिम होने का, तो जैद हुआ महकूमुन अलैह और आलिम क्या हुआ, महकूमुन बिही, तो ये दोनों मुदरक होने चाहिए कसदन, यानी अकल की तवज्जो इनकी तरफ कसदन होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज है आप उस पर हुक्म लगाना चाहते हैं तो अकल की उसकी तरफ तवज्जो होगी तो हुक्म लगाएगी कि जुबान वैसे ही चल पड़ेगी। मैं जैद के बारे में बताना चाहता हूं तो कि वो आलिम है, तो पहले मुझे किसका तसव्वुर करना पड़ेगा, जैद का, फिर किसका तसव्वुर करना पड़ेगा, आलिम का, और फिर इस आलिम की निस्बत किसकी तरफ करना पड़ेगी, जैद की तरफ। तो जिस चीज पर भी आप हुक्म लगाना चाहते हैं पहले मुस्तकिलन उसकी तरफ अकल की तवज्जो होगी और फिर उस पर हुक्म लगाएगी, बगैर सोचे समझे जुबान नहीं चलेगी। तो पहले उस चीज जिस पर हुक्म लगाना है उसका भी अकल तसव्वुर करेगी, और फिर जो हुक्म लगाना है जो महकूमुन बिही है उसका भी अकल तसव्वुर करेगी और फिर इसकी निस्बत कर देगी उस चीज की तरफ। जैदुन आलिमुन, जैद की मैंने बाकायदा तसव्वुर किया और फिर आलिमुन का भी बाकायदा तसव्वुर किया और फिर इसकी निस्बत मैंने किसकी तरफ कर दी, जैद की तरफ, कि जैद आलिम है भाई, खुद ब खुद मेरी जुबान नहीं चली भाई, बात समझ में आ रही है। तो जो भी महकूमुन आले और महकूमुन बिही बनते हैं वो कब बनेंगे, जब अकल की उनकी तरफ कसदन तवज्जो हो, वो बिज़ात मलहूज हो, वो तबान मलहूज ना हो भाई। यहां तक बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ जो मुदरकात हैं हमारे वो दो किस्म के हैं, कुछ बिज़ात मुदरक हैं और कुछ तबान मुदरक हैं। जो बिज़ात मुदरक हैं वो महकूमुन अलैह भी बन सकते हैं और महकूमुन बिही भी, और जो बितबा मुदरक हैं वो ना महकूमुन अलैह बन सकते हैं और ना महकूमुन बिही बन सकते हैं। फिर आगे मीर सैयदुस्सनद ने, यहां पर तो शारह जामी ने उनकी पूरी बात जिक्र नहीं की, लेकिन दूसरी जगह पर मीर सैयदुस्सनद इसकी वजाहत करते हैं आईने और सूरत के जरिए, आईने और सूरत के जरिए। आईना शीशा भाई, जिसमें आप अपनी सूरत देखते हैं, आप जब आईने की तरफ देखते हैं तो आपको आईना भी नजर आता है और आईने में अपनी सूरत भी नजर आती है। आप इसमें दो हालतें हैं हो सकती हैं आपकी, कभी आपकी तवज्जो सूरत की तरफ होती है बिज़ात, जब सूरत आईने में नजर आ रही है तो आईना भी साथ नजर आ रहा है या नहीं, तो मुबसर तो दोनों हैं, मुबसर मुबसर जो आंखों से दिखाई दे, मुबसर या यूं को महसूस तो दोनों हैं, आईना भी मुबसर है और उसके अंदर सूरत भी मुबसर है, लेकिन लेकिन इसमें दो हालतें हैं, लेकिन मसलन आप आईने के सामने आए और अपने बालों को सवार रहे हैं आईने के सामने खड़े होकर, तो इस वक्त आपकी तवज्जो जो है अपनी सूरत और बालों की तरफ बिजात है, कसदन है, और आईना भी आपको नजर आ रहा है लेकिन आईने की तरफ तवज्जो आपकी तबअन है। आईने को आपने आला बनाया है किसके लिए? अपनी सूरत देखने के लिए। आईने की मदद से आप अपनी सूरत देख रहे हैं, तो देखो कितनी चीजें नजर आ रही हैं इस वक्त, दो, एक अपनी सूरत और एक आईना, मुबसर दोनों हैं, या यूं कहो मुद्रक दोनों हैं, इदराक हम दोनों का कर रहे हैं, लेकिन सूरत मुद्रक है बिज़ात, उसकी तरफ आपकी तवज्जो है, अपने आप को उसमें संवार रहे हैं, और आईना मुद्रक है तबअन, आईने को आपने आला बनाया है किसके लिए? अपनी सूरत को देखने के लिए। तो इस वक्त आपकी सूरत की तरफ तवज्जो बिज़ात है, तो अब आप सूरत पर हुक्म लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि मेरे बाल संवर गए हैं या नहीं संवरे, आपके जहन में आएगा कि बाल संवर गए हैं काफी हैं, या बाल नहीं संवरे अभी मुझे और संवारने चाहिए, बात समझ में आ रही, या मुझे और सूरत संवारनी चाहिए, तो इस वक्त आपकी तवज्जो किसकी तरफ है? सूरत की तरफ बिज़ात है। और मैंने बताया जिस चीज की तरफ बिज़ात और कसदन तवज्जो हो वह महकुमुन अलैह और महकुमुन बिही बन सकता है, लिहाजा अब सूरत पर आप हुक्म भी लगा रहे हैं कि बाल मेरे या मेरी सूरत संवर गई है या नहीं संवरी, और आईने की तरफ आपकी तवज्जो क्या है? तब आन, लिहाजा आईने पर आप हुक्म नहीं लगा सकते इस वक्त कि आईना अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है, आपने उसको सिर्फ आला बनाया है। और दूसरी सूरत यह है कि आप बाजार जाते हैं आईना खरीदने के लिए, अब आप आईना बाजार में दुकान में आईना उठाकर देखते हैं शीशा, और उसमें आपको अपनी सूरत नजर आती है, अब भी आपको आईना भी नजर आ रहा है और अपनी सूरत भी नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त आपकी तवज्जो कसदन किसकी तरफ है? आईने की तरफ कसदन तवज्जो है, अब आपको सूरत भी नजर आ रही है लेकिन सूरत को आप आला बना रहे हैं आईने को परखने के लिए, यह आईना अच्छा है या नहीं, सूरत से आपको अंदाजा हो रहा है कि आईना अच्छा है या नहीं, तो यहां सूरत का भी इदराक आईने का भी इदराक, लेकिन सूरत मुद्रक है तबअन, उसको आपने आला बनाया किसके लिए? आईने के लिए, और आईना मुद्रक है कसदन यानी बिज़ात उसकी तरफ आपकी तवज्जो है, अब आप आईने पर भी हुक्म लगाते हैं कि यह आईना अच्छा है, देखा जरा देखो मेरे जुमले पर गौर करो, यह आईना इस पर हुक्म लगा रहा हूं अच्छा है, मुझे इसको खरीदना चाहिए, तो इस सूरत में देखो ये महकूमन आले और महकूमन भी ही बन सकता है कि यह आईना अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो इस वक्त मुद्रक दोनों हैं लेकिन सूरत जो मुद्रक है वो है तबअन और आईना मुद्रक है कसदन और बिज़ात, और सूरत को आपने आला बनाया आईने को परखने के लिए कि आईना अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो जो मुद्रक बिज़ात है यानी आईना वो महकूमन आले भी बन सकता है और महकूमन भी इस वक्त, लेकिन सूरत वो महकूमन आले और महकूमन भी ही नहीं बन सकती। हां इसी हालत में अगर आप आईना बाजार में खरीदने गए और आपकी तवज्जो अपनी सूरत की तरफ भी हो गई तो वो चंद लम्हों के लिए, अब आपने देखा मेरे बाल नहीं संवरे हुए या कुछ वो भी नजर आएगा, लेकिन उस लम्हे में आपकी तवज्जो कसदन किस तरफ हो चुकी है? सूरत की तरफ हो चुकी है, अब आईने की तरफ कसदन तवज्जो नहीं है, बात समझ में आ गई। तो आप ये ना कहें कि बाजार में हम आईना खरीदने गए और आईने को आईना क्या है उसकी तरफ कसदन तवज्जो और सूरत की तरफ क्या है तबान तवज्जो है, लेकिन कभी उसमें हमें यह भी तो नजर आ जाता है कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं तो वो भी ठीक कर लेते हैं उसमें फौरन, भाई जिस लम्हे में आपकी तवज्जो बालों की तरफ हो गई तो उस लम्हे में अब आईने की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है बल्कि आईने को अब आपने आला बना दिया किसके लिए? अपनी सूरत के लिए, बात समझ में आ गई। तो देखा मीर सैयद उस्सनद ने कमाल किया, क्या कमाल की मिसाल के जरिए वजाहत कर दी कि बस चीजें जो हैं उनका हम इदराक करते हैं कसदन और बिज़ात, और वह मलहूज होती हैं अपनी जात के एतबार से, और इस सूरत में वह महकूमन आले भी बन सकती हैं और महकूमन भी, और बाज वक़ात चीजें जो हैं वो मुद्रक होती हैं तबअन और उनको गैर के लिए आला बनाया जाता है, इस सूरत में न ये महकूमन आले बन सकते हैं और न महकूमन भी ही बन सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो आईने और सूरत की मिसाल के जरिए इसकी वजाहत कर दी, बल्कि दूसरी मिसाल ले लें, मसलन आप घड़ी में वक्त देखते हैं तो कभी आपकी तवज्जो कसदन किसकी तरफ होती है? वक्त की तरफ तवज्जो होती है, घड़ी की तरफ तवज्जो तबअन होती है क्योंकि घड़ी में आपको वक्त नजर आ रहा है, तो वक्त पर आप हुक्म लगाते हैं उस वक्त आपकी तवज्जो किसकी तरफ है, वक्त की तरफ। तो जब वक्त की तरफ कसदन तवज्जो है वह महकूमन आलय वगैरह या महकूमन बिही वगैरह बन सकेगा, क्योंकि कसदन बिजात उसकी तरफ तवज्जो है। और घड़ी को आपने उस वक्त के देखने के लिए आला बनाया है, घड़ी की तरफ भी तवज्जो है लेकिन तबअन है, कसदन नहीं। और कभी कभार आपकी तवज्जो घड़ी की तरफ कसदन होती है और वक्त की तरफ तबअन होती है। जैसे आपका कोई साथी नई घड़ी ले आया तो आप कहते हैं अच्छा भाई नई घड़ी लाए और लाओ भाई दिखाओ मैं भी जरा इसको देखूं। अब आप वो घड़ी लेते हैं, अब इस घड़ी में आपको वक्त भी नजर आ रहा है लेकिन कसदन आपकी तवज्जो वक्त की तरफ नहीं है, बल्कि कसदन आपकी तवज्जो किसकी तरफ है, घड़ी की तरफ है। वक्त की तरफ तवज्जो तबअन है इस वक्त भाई। या एक तीसरी मिसाल भाई, तीसरी मिसाल यूं करें, अपने सामने कॉपी पर जरा लिखें भाई जी, लिखिए भाई कामा जैदुन, कामा जैदुन। आप थोड़ा सा फासला देके दूसरा जुमला लिखें, निस्बतुल कियामी इला जैदिन, निस्बतुल कियामी इला जैदिन। लिख लिया निस्बतुल कियामी इला जैदिन। देखो ये दो जुमले हैं, कामा जैदुन ये एक जुमला, क्या माना जैद खड़ा है, और दूसरा जुमला निस्बतुल कियामी इला जैदिन, ये निस्बतुल कियाम यह है मुबतदा और इला जैदिन यह है इसकी खबर। तो निस्बतुल कियामी इला जैदिन क्या तर्जमा हुआ, कियाम की निस्बत है इला जैदिन किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो ये दो जुमले हुए। आप देखो जरा गौर करना भाई, इन दोनों जुमलों में कियाम की निस्बत जैद की तरफ हो रही है, कामा जैदुन में भी कियाम की निस्बत जैद की तरफ है और निस्बतुल कियामी इला जैदिन इसमें भी कियाम की निस्बत किसकी तरफ की गई है, जैद की तरफ की गई है। लेकिन दोनों जुमलों में बड़ा फर्क है भाई, आप देखें जरा अव्वल पहले जुमले को कामा जैदुन, इससे भी आपको निस्बत समझ में आ रही है, और निस्बतुल कियामी इला जैदिन इससे भी आपको निस्बत समझ में आ रही है। लेकिन अव्वल जुमला जो है यानी कामा जैदुन इसमें निस्बत मुदरक है, इसके अंदर निस्बत तबअन मलहूज है, और दूसरा जुमला निस्बतुल कियामी इला जैदिन इसमें जो निस्बत है वो कसदन मलहूज है, इसीलिए वो मुब्तदा बन रही है निस्बतुल कियामी इला जैदिन, जबकि कामा जैदुन में निस्बत तबअन मलहूज है, कसदन मलहूज नहीं। तवज्जो है, देखो ये जो निस्बत है ना कामा जैदुन, जरा इस जुमले पे नजर रखो, इसमें निस्बत इन दोनों की सिफत बन रही है, निस्बत ये निस्बत किसके दरमियान है, कामा और जैद के दरमियान है, तो ये निस्बत कामा की भी सिफत, ये निस्बत लफ्ज़े जैद की भी सिफत है, कामा की सिफत है ये निस्बत बाई लिहाज कि इस कामा की निस्बत की जा रही है, और जैद की भी सिफत है बाई लिहाज कि इसकी तरफ की जा रही है निस्बत। तो ये निस्बत क्या है, सिफत है किसकी, कामा की भी और जैद की भी। कामा की सिफत है किस लिहाज से, यह महकूमन भी ही है इसका हुक्म लगाया जा रहा है, और यही निस्बत किसकी सिफत है, जैद की भी सिफत है कि यह महकूमन अलह है, इसकी तरफ निस्बत की जा रही है, इस पर हुक्म लगाया जा रहा है। तवज्जो है, तो निस्बत इसके अंदर जो है उसका इदराक आप तबअन कर रहे हैं, और वो हालत है किसकी, कामा और जैद दोनों की हालत है, दोनों की सिफत है, अलग निस्बत का यहां कोई वजूद नहीं। आप जरा दोनों लफ्जों को अलग अलग कर दें, कामा को अलग कर दें जैद को अलग, अब कहीं निस्बत है नहीं, वो निस्बत तो थी ही किसके दरमियान, कामा और जैद के दरमियान, ये दोनों की हालत थी कोई अलग चीज नहीं। तो कसदन तवज्जो कामा और जैद की तरफ है अकल की, और इनके बीच में निस्बत भी समझ में आ रही है कि निस्बत ने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है, ये इन दोनों की हालत है, इन दोनों की यह सिफत है। तो निस्बत का इदराक कामा जैदुन में भी अकल कर रही है, लेकिन यह तबअन क्या है, मुदरक है, यह इन दोनों की हालत है, अलहदा कोई अलग चीज नहीं। जब यह इन दोनों की हालत है, अलहदा कोई चीज ही नहीं है, तो यह ना महकूमन बिही बन सकती है और ना महकूमन अलह बन सकती है। और जब दूसरे जुमले पर नजर रखें, निस्बतुल कियामी इला जैदिन, कियाम की निस्बत है जैद की तरफ, इसमें देखो निस्बतुल कियाम, निस्बत समझ में आ रही है या नहीं, निस्बत का माना यहां से भी समझ में आ रहा है लेकिन यहां मुस्तकिल बिज़ात है, कसदन उसकी तरफ तवज्जो है। निस्बतुल कियामी इला जैदिन दोनों को अलग अलग जरा कर दो, निस्बतुल कियाम अभी भी समझ में आ रहा है या नहीं? तो निस्बत अभी भी समझ में आ रही है, अलग मालूम हो ये अलग है, मुस्तकिल है और कसदन इसकी तरफ जहन की तवज्जो है। और जब कसदन एक चीज की तरफ जहन की तवज्जो हो, यानी यूं को जो चीज मुद्रक कसदन हो और बिज़ात हो, वो महकूमुन अलैह भी बन सकती है और महकूमुन बिही भी। इसीलिए निस्बतुल कियाम ये क्या बन रहा था? महकूमुन अलैह बन रहा था कि यह कसदन उसका इदराक किया है अकल ने। तो मालूम हुआ पहले जुमले में जो निस्बत समझ में आई कामा और जैद के दरमियान, वो मुस्तकिल बिज़ात नहीं, और इस निस्बत को हमने आला बनाया है किसके लिए? कामा और जैद की हालत जानने के लिए कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये किसने बताया हमें? निस्बत ने। तो निस्बत को हमने आला बनाया, यानी यूं का आईना बनाया जिसके अंदर हम किसको देख रहे हैं? कामा को और जैद को, कि आपस में जुड़े हुए हैं। और ये पूरा जुमला है, पूरी बात है भाई इसके अंदर, वो मुस्तकिल बे और वो मुस्तकिलन मफहूम नहीं हो रही। जबकि दूसरे जुमले में जो हमें निस्बतुल कियामी इला जैदीन, इससे जो निस्बत हमें समझ में आ रही है वो मुस्तकिल बिल मफहूम है, मुस्तकिलन लफ्ज निस्बत से वो समझ में आ रही है। तो मालूम हुआ एक माना कभी वो मुस्तकिल भी जात होता है और कभी वो मुस्तकिल भी जात नहीं होता। तो अकल को दोनों किस्म के मानी, अकल दोनों किस्म के मानी का इदराक करती है। कुछ मानी जो होते हैं मुस्तकिल भी जात होते हैं, कुछ मानी मुस्तकिल भी जात नहीं होते, और दोनों की ताबीर की भी हमें हाजत पड़ती है। कभी हमें एक ऐसा माना अदा करना पड़ता है जो मुस्तकिल बिल मफहूम होता है, कभी हमें ऐसा माना अदा करना पड़ता है जो मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं होता। तो जब मैंने इलफ से इब्तिदा कहा तो इससे आपको शुरू करने का माना मुस्तकिलन समझ में आ गया। और एक यह है कि मैं इब्तिदा का माना तबअन अदा करना चाहता हूं, मुस्तकिलन नहीं, तो उसके लिए फिर मैं मिन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं सिरतु और बसरा में निस्बत बयान करना चाहता हूं, अलग शुरू करना बयान नहीं करना चाहता। तो इस सूरत में फिर इसके लिए हम हर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम हर्फ के जरिए गैर मुस्तकिल बिल मफहूम माना को अदा करते हैं, और इसम और फेल के जरिए हम मुस्तकिल बिल मफहूम माना को अदा करते हैं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। देखिए भाई अब किताब पर कहते हैं, वह महसूलहू और महसूल इसका माजा कराहू बाजुल मुहक्किकीना, वो है जिसको जिक्र किया है बाज मुहक्किकीन ने। महसूल इस कलाम का, महसूल इसका जो शारह और मातिन ने फरमाया है वो है जो बाज मुहक्किकीन ने जिक्र किया। मैंने बतलाया था कि वह महसूलहू में किसकी तकरीर जिक्र करेंगे? अल्लामा जामी मीर सैयदुस्सनद रहमहुल्लाह की तकरीर जिक्र करेंगे। अब वही जिक्र कर रहे हैं कि वह महसूल इसका वो है मा ज़करहु बाज़ुल मुहक्किकीन, वो जो बाज़ मुहक्किकीन यानी मीर सैयदुस्सनद ने जिक्र किया है। हैसु क़ाला, इस तौर पर कि उन्होंने फरमाया है, कमा अन्न फिल खारिज मौजूदन क़ाइमन बिज़ाती ही, कि जैसे खारिज में एक मौजूद कायम बिज़ाती ही होता है और एक मौजूद कायम भी गैर ही होता है। कज़ालिक फी ज़हन माकूलुन, इसी तरह जहन में एक वो माकूल होता है कि हुआ मुद्रकुन कसदन मलहूजन फी ज़ाती ही, जो कसदन मुद्रक होता है, कसदन अकल उसका इदराक करती है, मलहूजन फी ज़ाती ही, और वो अपनी जात के एतबार से मलहूज होता है, यानी अकल की भी जात उसकी तरफ तवज्जो होती है। तो एक वो माकूल है, ये जो है यसलुहु अन युहकमा अलैहि व बिही, ये माकूल जो बिलजात मुदरक है ये सलाहियत रखता है कि ये महकूमुन अलैह बने या महकूमुन बिही, अन युहकमा अलैहि इस पर हुक्म लगाया जाए, व बिही और इसके जरिए हुक्म लगाया जाए। वह माकूलुन, और एक वो माकूल है वह मुदरकुन तबअन, जो तबअन मुदरक होता है, अकल तबअन उसका इदराक करती है। वह आलतुन लिमुलाहजति गैरिही, और ये गैर को मुलाहजा करने के लिए आला होता है, जैसे आईना आला था किसका इदराक करने के लिए? सूरत का इदराक करने के लिए। तो इस सूरत में जब वो माकूल तबअन मुदरक हो और आला हो गैर को मुलाहजा करने के लिए, यानी अकल की उसकी तरफ मुस्तकिलन तवज्जो न हो, तो फला यसलुहु लिशैइन मिनहा, मिन हो मा होना चाहिए भाई, ये मेरी किताब में मिन हा है, ये मिन हो मा होना चाहिए तस्निया। फला यसलुहु लिशैइन मिन हो मा, तो ये उन दोनों में से किसी चीज की सलाहियत नहीं रखता, यानी ये जो तबअन मलहूज है, तबान उसकी तरफ अकल की तवज्जो है, ये उन दोनों में से यानी महकूमुन अलै और महकूमुन बिही होने इनमें से किसी की सलाहियत नहीं रखता, ना ये महकुमुन अलैह बन सकता और ना महकुमुन बिही, क्योंकि महकुमुन अलैह और महकुमुन बिही कौन बनते हैं? जिनकी तरफ अकल की कसदन तवज्जो हो, क्योंकि एक चीज है उस पर हुक्म लगाना है, वो भी उसकी तरफ भी जहन की तवज्जो होनी चाहिए, और वो चीज जिसका हुक्म लगा रहे हैं उसकी तरफ भी अकल की कसदन तवज्जो होनी चाहिए। बहस अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस बेहदा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।